5 छोटी है मगर कहानी तो है। एक और विश्वास कहानी के जन्म से ही जुड़ा हुआ है कि हर कहानी का कुछ न कुछ अर्थ होता है। कहानी के नैतिक उपदेश ग्रहण करने के मूल में यही विश्वास है। पुराने जमाने के लोग पहले ही यह मान कर चलते थे कि कोई कहानी बेमतलब नहीं होती, और पुराने जमाने की कहानियों को देखकर आज भी यह लगता है कि लोगों की यह धारणा गलत नहीं थी। चाहे ही तो उपदेश हो या दादी की लोक कथा, अंततः वह नीति कथा। ऐसा करने पर ऐसा होता है, यह सूत्रवाक्य कहानी का भी है और नीति का भी। अंग्रेजी में जिसे मॉरल कहते हैं उसका संबंध एक तरह से देखा जाए तो कहानी के जन्म से ही है। इस विश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज भी यदि किसी को एक कहानी सुनाकर कहा जाए कि इसका कोई अर्थ नहीं है तो उसका संदेह बढ़ जाएगा। अंत में कोई अर्थ भले ही न मिले लेकिन अर्थ वह ढूंढेगा जरूर। बेमतलब ही कोई कहानी गढ़ने की जहमत उठाएगा जैसे हम यह मानने को तैयार ही नहीं है। आदमी कोई काम निष्प्रयोजन करता ही नहीं है, गोया यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है। इसे आदमी पर आदमी का अगाध विश्वास कहें या घोर संदेह, इसीलिए आज भी हर कहानी में उद्देश्य ढूंढा जाता है। क्या इसके मूल में यह विश्वास नहीं है कि हर घटना का कुछ न कुछ अर्थ होता है? अर्थ न भी हो तो हम हर घटना का एक न एक अर्थ लगा लेते हैं। अर्थ नहीं लगता तो हम उस घटना को दूसरी घटना से जोड़ते हैं। दूसरी घटना से जोड़ने पर भी अर्थ नहीं लगता तो स्वयं उस घटना को हम तोड़ते हैं, यह देखने के लिए कि शायद असली अर्थ कहीं अंदर छिपा हो। हर हालत में हम उस घटना को एक अर्थ देने की कोशिश करते हैं। अर्थ पाए या दिए बिना ही जैसे चैन ही नहीं मिलने का। जरा कल्पना कीजिए उस स्थिति की जिसमें हमारे आसपास घटनाएं तो घटती रहें लेकिन किसी का अर्थ हमारी समझ में न आए। दुनिया एक बहुत बड़ा पागलखाना हो जाएगी। आसपास की घटनाओं की बात तो अलग, खुद अपनी ही जिंदगी की घटनाओं का अर्थ न मालूम हो तो जिंदगी क्या हो जाएगी, कैसी लगेगी वह जिंदगी अपनी ही नजरों में। दुनिया में सब कुछ होता चले, किसी का अर्थ समझ में न आए और उनके बीच आदमी जीता रहे, क्या वह व्यापार ज्यादा दिन चल सकता है? कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ खुदकुशी कर लेते हैं और कुछ मशीन बन जाते हैं, लेकिन इसके पहले वे घटनाओं का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यह भी एक विरोधाभास ही है कि यह निरर्थकता भी कहानी के द्वारा एक अर्थ प्राप्त करती है। इससे पता चलता है कि घटना का अर्थ उद्घाटित करना ही कहानी का पहला कार्य है। इसके लिए घटनाओं को जोड़ना पड़े चाहे टुकड़े टुकड़े तोड़ना पड़े, जोड़ तोड़ का कार्य गौण है, इसका नंबर बाद में आता है। इस प्रकार कहानी एक सार्थक घटना है। अब यह घटना छोटी हो या बड़ी, सपाट हो या पेचदार, स्थूल हो या सूक्ष्म, बाह्य हो या आंतरिक, यदि उसका कुछ अर्थ है तो वह कहानी है। विरासत में हमें अतीत से ऐसी बहुत सी कहानियां मिली हैं, जिनमें सिर्फ एक छोटी सी सार्थक घटना कही गई है। ईसप, पंचतंत्र और जातक की बहुत सी कहानियां ऐसी हैं, उन्हें चुटकुले की तरह सुनाया जा सकता है। अंग्रेजी में उन्हें एनेक्डोट कहेंगे, और वह छोटी सी घटना भी जैसे घटना का निरा कंकाल। जीवन के एक अनुभव को गोया एकदम नंगे या मूल रूप में ज्यों का त्यों रख दिया गया हो। हजारों वर्ष हो गए लेकिन न उनका कोई हिस्सा टूटा और न चमक कम हुई। कहानी क्या है कि एक हीरा वर्ष जैसे उसे तराशते चले गए हों। कभी इस पर भी विचार किया गया है कि उसके इस अस्थायित्व का क्या रहस्य है? इन कहानियों का जिक्र कहानी का इतिहास और विकास बतलाते समय प्रायः किया गया है, लेकिन आधुनिक कहानियों की चकाचौंध में प्रायः इन पर दृष्टि नहीं ठहरी। दरअसल ये इतिहास की ही चीज समझी जाती रही हैं। आज भी कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ठीक ठीक कहानी नहीं है। अधिक से अधिक उन्हें कहानी का प्रारंभिक रूप ही समझा जाता है। प्रारंभिक युग की कहानी यदि कहानी का प्रारंभिक रूप समझी जाए तो इसमें क्या असंगत हो सकती है। लेकिन यदि आज भी उसी प्रकार छोटी छोटी एनेक्डोटल कहानी लिखने की प्रवृत्ति दिखाई पड़े तब संगत बैठाने का प्रश्न अवश्य उठेगा। और यह तथ्य है कि इधर छोटी छोटी सार्थक घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति बढ़ चली है। लगता है कि कहानी अपने घटना विन्यास में सहसा आदिम हो उठी है। हेमिंग्वे, जेम्स जॉइस, काफ्का, आइजक बैवेल आदि की अनेक कहानियां सहसा इस सब के फेबुल सी लगती हैं। वहीं लघुता का और वहीं साथ की ऐसा प्रतीत होता है कि नए सिरे से घटनाओं का अर्थ ढूंढने के लिए कहानी पुनः आदिम जिज्ञासा से युक्त हो उठी है। आज के कहानीकार में यह आदिम जिज्ञासा पुनः क्यों पुनर्जीवित हुई है। घटनाएं घटनाएं और घटनाएं। आज के जमाने में भला कोई कहानीकार किसी को कोई घटना सुनाकर चकित कर सकता है? सुना जो कानों में था न हमने, वो आंखों से इन अकबाल देखा। कुतूहल की तृप्ति जो आज अखबार ही कर सकता है, और फिर अखबार भी अब क्या चमकाएगा। कभी भी ऐसी बात कहने लगे हैं कि सूर्योदय का आघातहीन ताजा समाचार है। इसीलिए जरूरत तो आज घटनाओं के अर्थ बतलाने की है। क्या करेगा कोई घटनाओं का लंबा सिलसिला लेकर? मुख्य प्रश्न तो अर्थ है। घटना का अर्थ, अनुभव का अर्थ, किसी के जबान से निकले हुए मामूली से एक शब्द का अर्थ, किसी के चेहरे पर उभरी हुई एक हल्की सी रेखा का अर्थ। हो सकता है कि इन संकेतों में कोई गूढ़ कहानी छिपी हुई हो। घटनाओं की भीड़ भाड़ में ये छोटे छोटे संकेत प्रायः बड़े बड़े सत्य को प्रकट कर देते हैं। जैसे गुप्त अंधकार में सहसा जुगनों की चमक। संभवतः जेम्स जॉइस की अनेक कहानियों के पीछे जीवन संबंधी यही समझ है, जिसे वे एपिफैनी कहते थे। इस प्रकार मुख्य प्रश्न है छोटी से छोटी बात की तदर्थता का प्रकाश। और अर्थ भी कोई सा या कुछ भी नहीं, कुछ न कुछ अर्थ तो कोई भी बता सकता है शायद। कहते हैं कि महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी के पास यदि कोई अर्थ बुझने के लिए कविता लेकर जाता था तो निराश नहीं लौटता था। द्विवेदी जी का भी दृढ़ विश्वास था कि जब शब्द हैं तो उनका कुछ अर्थ होगा ही। जब लोग हाथ की रेखाओं तक का अर्थ निकाल लेते हैं, यहाँ तक कि हस्त रेखाओं और चिन्हों को लेकर कोश, व्याकरण, लक्षण ग्रंथ से युक्त पूरा का पूरा एक शास्त्र ही खड़ा कर दिया गया है, तो फिर जीवन से युक्त जीवन की घटनाओं के अर्थ के बारे में क्या कहना। बुद्धि हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। इसीलिए आवश्यकता है ठीक ठीक अर्थ की, ठीक ठीक नहीं तो निकटतम। यही वजह है कि किसी घटना का ठीक ठीक अर्थ जानने के अभिलाषी कहानीकार उस घटना को ठीक ठीक जानने और जानकर ठीक ठीक शब्दों में प्रस्तुत कर देने के लिए अधिक सचेष्ट दिखाई पड़ते हैं। हेमिंग्वे की कहानी लेखन की दिशा में अपने प्रारंभिक प्रयास की बात करते हुए एक जगह लिखा है कि कोई घटना ठीक ठीक किस रूप में घटी है उसको हूबहू उतार देने के लिए मैं उन दिनों जी तोड़ मेहनत कर रहा था और इस तरह लिखना सीख रहा था। बर्तोल्ट ब्रेख्त की प्रयोग द एक्सपेरिमेंट शीर्षक एक कहानी सिर्फ इसी वस्तु को लेकर लिखी गई है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेकन ने किस प्रकार एक अपढ़ गवां लड़के को चीजों को सही नाम से पुकारने की वैज्ञानिक शिक्षा दी। कहानी अगस्त 61 की है, लंदन मैगजीन में प्रकाशित हुई है। ब्रेख्त ने उस कहानी में दिखलाया है कि किसी चीज को ठीक ठीक जानने से पहले ही किस प्रकार लोग उसके बारे में पूर्व प्रचलित अच्छा बुरा सुंदर असुंदर आदि विशेषणों का प्रयोग कर बैठते हैं। तात्पर्य यह कि किसी चीज के ठीक ठीक वर्णन में पूर्व प्रचलित विशेषण कितने बाधक होते हैं। इसे फली भांति समझने की जरूरत है। सही अर्थ के लिए किसी घटना का सही वर्णन अतिरंजित करने का जमाना लग चुका है। अतिरंजना का प्रलोभन वैसे बड़ा ही विकट है, किंतु हम जानते हैं कि अतिरंजना के लिए पिछले युगों में हमने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। पल भर का विनोद जिंदगी भर के लिए महंगा पड़ा है। उदाहरण के लिए, यदि ट्रेन में एक आदमी किसी दूसरे यात्री को बैठने की जगह दे देता है, तो आज यह ठीक ठीक बताने की जरूरत है कि उसके मूल में कौन सा मानवीय कारण है। कौन नहीं जानता कि दूसरों की सहानुभूति लूटने के लिए प्रायः लोग अपनी यात्रा की मुसीबत को बहुत बढ़ा बढ़ा कर बयान करते हैं। कहना न होगा कि एक तरह की यह मुसीबत ही बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। रघुवीर सहाय ने कहानी की कला में ऐसी एक छोटी सी घटना के जरिए बात को और भी स्पष्ट किया है। एक यात्री दूसरे यात्री को अंततः बैठने की जगह देता है, लेकिन उस यात्री के प्रति ज्यादा सहानुभूति बटोरने के लिए कहानीकार किस तरह जमीन आसमान के कुलाबे मिलाते हैं। इस तरह कहानी भी छोटी से बड़ी हो जाती है, यानी उसकी समझ से वह चुटकुले से कहानी हो जाती है और कुछ देर तक लोगों को अटकाए भी रखती है। विवरण में उसकी गरीबी, मरणासन्न नमा की बीमारी का तार पाकर स्टेशन भागना, प्लेटफार्म पर उसकी जेब काटना, ट्रेन तक पहुंचने से पहले दो से टकराना, चार से गालियां खाना, बादल बिजली वगैरह वगैरह, और यह सब सिर्फ इसलिए कि उसकी मुसीबत का पूरा पूरा भान हो जाए और उस पर दया करने के लिए उपयुक्त बल्कि प्रभुत आधार प्रस्तुत हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या आपको ऐसे आदमी से कोई मानवीय सहानुभूति नहीं होगी जो न दयनीय हो, न आर्द्र हो, न वरन जो केवल कष्ट में हो? क्या अतिरिक्त भाव से क्लांत होना सामान्य स्वाभाविक संवेदना पाने के लिए जरूरी है? इस प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रघुवीर सहाय पूछते हैं कि क्यों हम बिना किसी अतिरंजित दृष्टि के वह घटना पहचान ही नहीं पाते और उसे पहचान कर चौंकते क्यों हैं? क्यों हम यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई संबंध तभी बनता है जब उसके बनने की संभावनाएं सबसे कम होती हैं? जिस कहानी को चरखा या तकली पर काट कर कोई लंबी से लंबी कर सकता है, उसे रघुवीर सहाय ने संक्षिप्त या यथावत रूप में प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार लिखा है कि पहले तो दूसरे यात्री ने कहा कि नहीं, मैं आराम करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे चुपचाप खड़े देखकर अपने आप बोल उठा कि भाई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आप यहाँ बैठ जाइए। कहना न होगा कि यह घटना अपरिचित है और घटना का प्रस्तुत रूप अति सहज है, किंतु स्पष्ट है कि इस सहजता का विशेष अर्थ है। तमाम अतिरंजनाओं को काट छांट कर यदि उस घटना को इतना सहज और संक्षिप्त रूप दिया गया है, तो सिर्फ इसलिए कि एक निरपेक्ष मानवीय सत्य का ठीक ठीक उद्घाटन हो सके। ऐसी मानवीयता का उद्घाटन जो एक मनुष्य के प्रति दूसरे मनुष्य के मन में सहज संस्कार की तरह बद्ध मूल है, जो तमाम अवरोधों को पार कर सहसा प्रकट हो जाती है। इसको क्या कहा जाएगा कि अनेक आवरणों में ढकी हुई बुनियादी मानवीयता को विवरण के अनेक आवरणों को हटाकर घटना का मूल रूप प्रस्तुत किया गया है, या निरावरण घटना का मूल रूप प्रस्तुत किया गया है, या निरावरण घटना के द्वारा निरावरण मानवीयता का उद्घाटन किया गया है। अब आप कहेंगे कि क्या कोई कहानी है? यह तो तीसरे दर्जे में घटने वाली एक दैनंदिन घटना है, और इसे आप कहानी कहते हैं तो इसमें चौंकाने वाली बात कहाँ है? इस पर रघुवीर सहाय का कहना है, मैं जानता हूँ कि ऐसे कोई कहानी नहीं कही जाती है कि यह हुआ, फिर वह हुआ और अंत में यह हुआ इति, मगर यह खूब जानता हूँ कि कहानी होती ऐसी ही है। उसका आरंभ भी होता है, मध्य भी और अंत भी, परंतु उसके बीच केवल एक घटना होती है, और मुझे तो केवल घटना का वर्णन करना है, केवल यह बताना है कि जब दो व्यक्तियों, दो मानवों के बीच एक संबंध टूटा और दूसरा बना, तो उसमें क्या कहानी पैदा हो गई। मोटे तौर से इधर जो छोटी छोटी कहानियां लिखी जा रही हैं, उनमें से अधिकांश के मूल में यही सिद्धांत है। स्वयं रघुवीर सहाय ने सेब, खेल, लड़के आदि कहानियों के द्वारा हिंदी में इस प्रकार की कहानियों की एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है। सेब कहानी में सड़क के किनारे टूटे से पर एम्बुलेटर में बैठी बीमार सी लड़की के हाथ में लाल सेब देखकर जब वे कहते हैं कि उसके हाथ में एक छोटा सा लाल सेब दिखाई पड़ गया और मैं एकदम हक से वहीं खड़ा रह गया, तो तुरंत आभास हो जाता है कि कहानीकार को सहसा कोई नया सत्य झलक गया। लड़की ने अपने सेब की तरफ देखा, पूछा, बप्पा? बाप ने बड़े प्यार से मना कर दिया। बीमार लड़की धैर्य से अपने सेब को पकड़े रही, उसने खाने के लिए जिद नहीं की। एक साधारण सी घटना भी कितनी अर्थपूर्ण हो सकती है, सेब जैसे इसका एक उदाहरण है। प्रचलित कहानियों में अभ्यस्त पाठक संभव है इसे कहानी ही न माने, लेकिन क्या अपने आप में पूर्ण यह छोटी सी सार्थक घटना कहानी नहीं है? कहानी के लिए और चाहिए क्या? छोटी है मगर कहानी तो है।